नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में हम आपको विभिन्न विभिन्न भावों और इमोशंस के बारे में बताते हैं। ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट इमोशन, एक ऐसे भाव जिसे हम तनाव कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, हमने डॉक्टर गिरीश पटेल से बात की। पहले दो एपिसोड में हमने चर्चा की कि स्ट्रेस आखिर होता क्या है, क्यों होता है, इसके कारण क्या है और इससे संबंधित भ्रांतियां क्या हैं। तो जब हम भ्रांतियां, अपने तनाव को जब हम समझ लेते हैं, तो एक ही चीज हमारे सामने बसती है कि अब तनाव का निवारण कैसे किया जाए। तो आज हमने अपने स्टूडियो में फिर आमंत्रित किया है डॉक्टर गिरीश पटेल को। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर गिरीश पटेल एक फेमस साइकोथेरेपिस्ट और मेडिटेशन एक्सपर्ट्स हैं, जो कि वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ब्रह्मा कुमारीज की उनसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब का 30 साल से भी अधिक संबंध है इस यूनिवर्सिटी से और राजयोग की शिक्षा डॉक्टर साहब ने बचपन से ही ली है। तो डॉक्टर साहब, अब हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि तनाव क्या है, कैसा है, ये तो आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, पर तनाव का निवारण, उसका उन्मूलन कैसे किया जाए और क्या ये फिजिबल है, क्या ये आसान है, कोई अप्रोच इसके लिए है? क्योंकि इतने स्ट्रेस सेमिनार्स होते रहते हैं लेकिन बात फिर वहीं आकर अटक जाती है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए और हमारे पास कुछ स्टेप्स रहे। अगर आपने कुछ स्टेप्स समझ लिए हैं, उसको मास्टर भी किया है, और स्टेप्स अगर आपके पास रेडी हो, तो जब भी स्ट्रेस हो तो उसमें से कोई ना कोई दो या तीन स्टेप्स को आप अपना सकते हैं और प्रैक्टिकल लेवल पर स्ट्रेस को आप कम कर सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा इससे पहले कि आप स्टेप्स बताएं। जनरली सेमिनार्स में और जितने लेक्चर्स में देखे हैं कि कोई पॉइंट प्रोग्राम दिया जाता है, तो जो आप अप्रोच हमें बताएंगे कि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्या ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्या जीवन शैली के लिए, मतलब एक, क्योंकि आज का मनुष्य बहुत ही गतिशील जीवन में जी रहा है, तो एक रियल लाइफस्टाइल अप्रोच है?
या डेफिनेटली इट्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच। हमने कई बार ट्राई भी किया है,
ट्रायल
बेस्ड। जब उनको स्टेप्स बताए
जी हाँ,
तो लोगों ने फिर फोन करके या पर्सनली मिलके भी कहा
रिस्पॉन्स
कि भाई ये दो स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट थे, तीनों को मैंने यूज किया और मेरी स्ट्रेस कम।
मतलब कहा जाता है कि कोई भी एक स्टेप लिया जाए तो एक स्टेप से दूसरा स्टेप ऑटोमेटिकली
फ्लो आता है। कि जो सी से स्टार्ट होने वाली चार बातें हैं,
पहला सी तो है
चैलेंज। पहले मैं चारों सी बता दूं, फिर हम एक एक की चर्चा भी करें। फर्स्ट सी इज चैलेंज, सेकंड इज कंट्रोल, थर्ड इज कम्युनिकेट एंड फोर्थ इज कोऑपरेट। तो ये चार सीज को अगर हम अपनाएं तो प्रैक्टिकली हमारा स्ट्रेस लेवल है वो कम हो सकता है।
एक बार आप फिर बताएंगे डॉक्टर साहब?
हाँ जी हाँ, मैं एक एक भी डिटेल में बताऊं कि पहला तो है सी, मतलब चैलेंज। परिस्थिति से दूर न भागे, पहले भी हमने चर्चा की है कि भी एस्केप नहीं होना है परंतु उसका सामना करना है। कि जब हम परिस्थिति से दूर भागते हैं तो परिस्थिति के कई पहलू है, जैसे एक परिस्थिति का पांच पहलू है, अगर आप उसको अवॉइड करने की कोशिश कर, चलो एक दो चीजें तो ठीक हो गई, लेकिन दूसरे पहलू की जिसको आप फेस नहीं कर पाए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। परंतु जब आप उसे चैलेंज के रूप में लेते हैं तो आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है एंड यू कैन डील विद ऑल द फाइव एस्पेक्ट्स, यू कैन कोप मोर इफेक्टिव।
मतलब मैदान से दूर ना भाग के उसको फेस करने के लिए एकदम, तो ये थॉट ही अगर हम अपने मन में लाए तो एकदम पावरफुल इमोशंस आते हैं
और बहुत कुछ कर सकते हैं। वास्तव में एक तो मैं बता दूं कि चैलेंज लेने से क्या होता है।
जी,
एक महिला थी कि जिसके सामने उसका एक छोटा सा 3 साल का बच्चा बहुत बड़ी गाड़ी, करीब 1400 पाउंड की कार थी, उसके नीचे फंस गया। अगर तुरंत कार को उठाया न जाए तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। हाँ, तो एक सेकंड की भी उसने देरी नहीं की, तुरंत ही गाड़ी को उठा लिया, और 2-4 सेकंड के लिए नहीं, पूरी 1 मिनट के लिए उसने गाड़ी को उठा करके रखा कि तब बच्चा सेफली बाहर आ गया, क्योंकि ये चैलेंजिंग सिचुएशन थी। अन्यथा शायद वह भी कहती कि भी मैं तो ज्यादा 25 किलो 50 किलो भी नहीं उठा सकती हूं। तो ऐसे ही क्यों ना हम हर परिस्थिति को चैलेंज के रूप में ले।
मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उस महिला ने ऐसा चैलेंज लिया तो उसमें इतनी एनर्जी
आ गई,
मतलब जस्ट थॉट पावर से, एक संकल्प करने से ही इतनी एनर्जी
आई। या तो दिस वाज नो एन एक्सीडेंटल सिचुएशन।
जी,
हर एक में ऐसा होगा, हमने किससे भी सुने कि भी शेर के मुंह से भी माँ बच्चे को बचा करके लाई, वास्तव में उसमें इतनी शक्ति नहीं है परंतु एक सिचुएशन था। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर छोटी परिस्थिति को भी कि अगर आपका बॉस थोड़ा डिफिकल्ट है, वो ज्यादा डिमांडिंग है,
प्रैक्टिकल
आपके ऊपर वर्क प्रेशर है, तो उससे दूर भागने के बदले उसको चैलेंज के रूप में लो, तो आपकी कैपेसिटी 20 गुना 25 गुना बढ़ जाएगी और आप लाइफ में प्रोग्रेस भी करेंगे। और अगर चैलेंज के रूप में लेना हो तो ये तीन शब्द याद रखने चाहिए, वो तीन शब्द है फेस इट, फाइट इट एंड फिनिश इट। हमेशा सोचिए मुझे उसका सामना करना है, उसके साथ लड़ना है और ये परिस्थिति को हरा देना है। दूसरे भी ऐसे तीन अच्छे शब्द है, वह है ग्रीट इट, मीट इट एंड बीट इट। कि जब प्रॉब्लम आए तो उसको कहो हेलो हाय वेलकम, दूर नहीं भागना है, मीट इट। हाँ, एवरी सिचुएशन इज अ
डिमांड,
वो जो डिमांड है उसको मीट करिए।
तीसरा
अल्टीमेटली बीट इट, मतलब हरा दीजिए उसको, नहीं खत्म कर दीजिए बात को।
और पहले आपने तीन शब्द क्या बताए थे वो एक बार आप?
या फेस इट, फाइट इट एंड फिनिश इट। ऐसे कुछ स्लोगन्स भी होने चाहिए, बहुत अच्छा। कुछ
मतलब ये एक छोटी सी एक कैरी होम टिप है, मैसेज है, जो व्यक्ति अगर अपने अंदर चैलेंज लाना चाहे, और इसका सिमरन करते ही एनर्जी बहुत आती है।
और एक स्लोगन भी मैं हमेशा बताता हूँ, जिन्होंने मेरे प्रवचन सुने कभी सुना भी होगा, वह स्लोगन है फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, आग को भी बदल देंगे हम बाग में, सर करेंगे आखिर सब मोर्चे कि आने दो मौत को भी सामने। ऐसे ना, विद बॉडी लैंग्वेज यू शुड
से,
बॉडी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट।
मतलब इसका अगर आप बोले तो अंदर से एनर्जी का जो फ्लो आता है,
गुस्सा करने के लिए
पहली चीज जो है हमारे दर्शक जाने की बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपने अंदर ये हिम्मत लाना कि मैं इसको चैलेंज ले सकता हूं। क्योंकि आधे लोग तो आप बैटल तभी हार जाते हैं, हम अपनी बैटल की जब हम सोचते हैं ये कर नहीं सकते, ये थॉट आए और हम हार जाते हैं।
एक सीड हो कि मेरे में 100 गुना ज्यादा कैपेसिटी, कोई भी उससे
कोई भी परिस्थिति आए मुझे सामना
करना है
चैलेंज करना है। तो चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप हुई पहले।
दूसरा सी है कंट्रोल।
कंट्रोल
कि अधिकतर हम कंप्लेन करते हैं,
जी हाँ,
परंतु कंप्लेन ना करे, यह सोचे कि मेरे जो कंट्रोल में है वो मुझे करना है। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस।
बिल्कुल सही कह रहे हैं,
कई बार आपने
दर्शक जानते भी उनके बारे में,
टीवी में भी आपने देखा होगा, अखबारों में आता है,
बिल्कुल बहुत ही,
कि जिनको एक डिस्ट्रॉफिक इलनेस हुई है कई साल पहले,
मूवीज भी बनी है इन पर, और काफी प्रेरणादायक मूवीज बनी है,
बिल्कुल, कि जिसमें उनके शरीर के सभी अंग में लकवा हो चुका है, यहाँ तक कि वो अपनी लार को भी नहीं संभाल सकते, नर्स को साफ करना पड़ता है कुछ समय के बाद। तो ऐसी भयानक परिस्थिति में भी उन्होंने सोचा कि मेरे कंट्रोल में क्या है और वो करना है। इसमें छोटी सी अच्छी बात यह है कि उनकी उंगलियां काम कर रही है, सारा शरीर पैरालाइज हो गया है और दिमाग बिल्कुल ठीक है, दिमाग को जरा भी चोट नहीं लगी। तो वो कंप्यूटर पर इतना अच्छी थियोरीज बनाते हैं, उन्होंने ब्लैक होल्स पर काफी काम किया है
जी।
तो उन्होंने कंप्यूटर पर अपनी थियोरीज को ही वो चेंज करते रहते हैं
जी।
भारत में भी कई बार आए, पहली बार जब भारत में आए तो कई अखबारों में फ्रंट पेज में हेडलाइन थी हीरो नंबर वन प्रोफेसर हॉकिंस। तो उनको आज दुनिया ज्यादा सम्मान देती है क्योंकि ऐसी परिस्थिति के बीच में कुछ अपने कंट्रोल में करना,
मतलब विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी, विपरीत उनको होते हुए भी जो हमारे बस में है उसको ऑप्टिमली यूज
कर रहा
तो कंट्रोल किया सिचुएशन। तो डॉक्टर साहब, मैं जैसे आप बता रहे हैं मेरे दिमाग में ख्याल आता है, जैसे हम सोचते हैं कि हम मीनिंग की बात करते हैं, तो लाइफ में कोई भी हम मीनिंग ढूंढते हैं तो कहा जाए कि हमारा जो थॉट पावर है या माइंड जो पावर है वो एकदम डाइवर्ट हो जाती है उसकी तरफ, और जो पेन हो रहा होता है उस सिचुएशन से वो हम शायद महसूस नहीं कर पाते हैं। तो शायद इसका बेसिस यही होगा कि हमारा माइंड इतना डाइवर्ट हो जाता है और उस तरफ फोकस्ड हो जाता है। ये तो काफी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल और मोटिवेटिंग है कि अगर हम अपने जीवन में कोई भी एक लक्ष्य लेकर चले, कोई एक ध्येय लेकर चले, अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंग ढूंढे कि आई एम हेयर फॉर अ पर्पस फॉर लाइफ, तब हम अपने ऊपर कंट्रोल ले सकते हैं,
या तो रिपीटेशन खत्म हो जाता है।
बिल्कुल, रिपीटेशन खत्म हो जाता है।
जो स्ट्रेस होता है वो परिस्थिति तनाव नहीं पैदा करती है, जब उसे बार बार रिपीट करते हैं वो रिपीटेशन तनाव पैदा करती है। इसलिए इसे अगर हम कोई मीनिंग को ढूंढेंगे तो रिपीटेशन खत्म हो जाएगा।
तो डॉक्टर, मैं समझता हूँ चैलेंज लोगों ने एक्सेप्ट किया हमारे दर्शकों ने और कंट्रोल भी अब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीसरा सी आप क्या?
तीसरा सी है कम्युनिकेट। मतलब क्या कि कहते हमारा जीवन एक प्रेशर कुकर की तरह।
बिल्कुल सही बोला आप,
प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता है तो वो सेफ्टी वाल्व काम करने लगता है और प्रेशर कम हो जाता है। परंतु हमारे जीवन में कोई ऐसा सेफ्टी वाल
नहीं है बिल्कुल।
तो इसके कारण स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, क्योंकि अंदर ही अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है और ऑर्गन्स है वो डैमेज होने लगते हैं। परंतु फिर भी एक कुदरत ने सेफ्टी वाल दिया है, वह सेफ्टी वाल है कम्युनिकेट, कि भी अपना दुख है वो औरों को बताए, एक व्यक्ति को भी। ये भी गलत है, कई बार जो ऐसे मरीज होते हैं वो सभी को अपनी समस्या सुनाते ही रहते हैं और उल्टा ज्यादा दुखी दूसरों को करते हैं। परंतु एक दो भी भले आपके अच्छे मित्र हो जिनकी आपके प्रति एक एम्पथी है, सहानुभूति है, उनको आप अपनी बात बताइए।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइए, आपने बात की मित्रों की या संबंधियों की, अगर किसी के मित्र संबंधी ना हो या उन्हीं की वजह से हो तो किससे बात करेगा?
कोई कम से कम कोई एक व्यक्ति, हो सकता है मित्रों के कारण भी तनाव होता है, फैमिली मेंबर्स के कारण होता है।
अच्छा, मैंने देखा है कि कई लोग जाके भगवान की मूर्ति के आगे रोने लग जाते हैं, ये भी तो मैं समझता हूँ कि भगवान से बात करना भी काफी
अच्छा, वंडरफुल बात है।
मेरे को लगता है भगवान तो हर परिस्थिति में आपके साथ है,
क्योंकि भगवान रिएक्ट नहीं करता है, भगवान आपको सुनता है।
अच्छा, मजे की बात एक और मुझे जो ध्यान आ रही है कि अक्सर लोग ऐसी चीजों के बारे में बात करने के लिए डॉक्टरों के पास भी जाते हैं। इनफैक्ट एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि अमेरिका में आधे घंटे बात सुनने के लिए साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है आपसे $100 चार्ज कर लेता है। तो मैं हंसी की बात यही कह रहा था कि भगवान तो एक ऐसा साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है जिसकी कोई फीस भी नहीं है और जितना घंटा रोना चाहे रो सकते हैं, अपनी बात पूरी भगवान को बताइए। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही अच्छा टूल हो जाता है।
और आपने जो कहा वो रोना भी अच्छा है, बार बार नहीं रोना चाहिए, छोटी बातों में नहीं रो, किन कब अगर लगे कि प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, इट्स अनबेरेबल, तो अगर रो लेना भी बहुत अच्छा है। साइंटिफिकली देखा गया कि आंसुओं में दो हॉर्मोन्स है, प्रोलैक्टिन एंड कॉर्टिसोल, ये दोनों स्ट्रेस हॉर्मोन्स है, और जब वो कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है।
अच्छा डॉक्टर, एक चीज और मेरे को ध्यान आ रही थी, कई सेमिनार्स में हमने सुना भी और देखा भी है कि विष्णु का भी जब हम चित्र दिखाते हैं तो उसमें शंख का जो है वो ब्लोइंग एक्सप्रेशन दिखाया जाता है। तो अनलेस एंड अंटिल यू एक्सहेल या कम्युनिकेट करते हैं, तो मेरे को लगता है ये काफी कोरिलेशन है इसमें देखा जाए तो, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के आगे प्रस्तुत करते हैं या भगवान से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो आपका स्ट्रेस काफी कम हो जाता है। और उसको भी तरीके से कम्युनिकेट करना
पॉजिटिव
कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट इसमें महत्व दे दी है। तो डॉक्टर साहब, हमारे तीन सीज आपने बताया, चैलेंज, फिर
कंट्रोल
और फिर
कम्युनिकेट, फोर्थ इज कोऑपरेट।
कोऑपरेट
का अर्थ है कि आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार दूसरों को भी सहयोग दो।
जी,
भले आप सोशल वर्कर न भी बनो, परंतु नेबर में भी कोई प्रॉब्लम है उनको जाके अगर थोड़ी सी आप हेल्प करते हैं,
जी हाँ,
उनकी बातों को सुनते भी है, जैसे अभी हमने कम्युनिकेट करने की बात की,
जी हाँ बिल्कुल सही,
औरों के प्रॉब्लम भी आप भी सुनो,
सब भी सुने।
जब हम औरों के प्रॉब्लम सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि मेरी समस्या तो बहुत छोटी है,
जी हाँ बिल्कुल,
परंतु और बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, आपको अपना दुख है वह कम लगता है।
मतलब इसमें जैसे कहा भी गया है, कई लोग कहते हैं कि आप जहां पर हैं तो आगे देखने के बजाय पीछे भी देखें, कितने लोग आपसे पीछे भी चल रहे हैं,
बिल्कुल,
तो आपको पता लगेगा कि कितने हम बाकी लोगों से बेटर भी हैं,
बिल्कुल,
और दिल में सहानुभूति की भावना आती है, कोऑपरेशन का भाव जो है स्वतः ही जागृत होता है।
और एक फायदा यह होता है कि आपको अपनी समस्या के बारे में सोचने का समय नहीं रहता,
बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको महसूस नहीं करते,
तो इसके कारण भी आपको बहुत बड़ा फायदा होता है,
बहुत बड़ा फायदा।
तो ऐसे हमें कोऑपरेट भी करना चाहिए। और कहते हैं लाइफ क्या है, लाइफ इज इनफैक्ट बूमरैंग,
बिल्कुल सही आपने बोला,
कि वो जो एक शस्त्र है कि
ईगो की तरह
है, हाँ, छोड़ता है जो व्यक्ति उसी के पास वो वापस आता है। तो ऐसे ही लाइफ में भी इट्स रियली एन बूमरैंग, व्हेन वी डू समथिंग इट रियली कम्स बैक टू अस, उसके भी अच्छे अच्छे उदाहरण।
बिल्कुल आपने सही बोला, इस पर मुझे भी एक छोटी सी बात आ रही है ध्यान, जिसमें कहा गया कि गुडनेस हैज अ नेचुरल वे ऑफ कमिंग बैक, इट्स लाइक अ बूमरैंग, इफ यू गिव इट टू अदर्स इट कम्स बैक टू यू। तो मतलब दूसरे के लिए अगर आप अच्छा करते हैं, किसी के लिए अच्छा भाव रखते हैं, तो उसके मन में स्वतः ही आपके लिए एक अच्छा भाव
निर्माण हो।
तो चौथा सी जो है कोऑपरेट, तो कोऑपरेट के बारे में आप क्या एग्जाम्पल हमें दे रहे थे?
थियरी तो हमने समझी, प्रैक्टिकल में अगर देखना हो
एक वर्किंग,
हाँ, कि एक बार एक मुसाफिर है, वो एक छोटे से गांव में बेचारा घूमता घूमता आया वहां पर, और उसने एक दरवाजे पर बेल बजाई तो करीब 11 साल की लड़की बाहर आई, और वो व्यक्ति बिल्कुल थका हुआ था, बहुत हिचकिचा भी रहा था, ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल। फिर भी उसने कहा कि क्या मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा? तो लड़की ने देखा कि भई ये सचमुच प्यासा तो है, परंतु लगता है भूखा भी है,
भूखा भी है।
तो उसको अंदर से गई और एक ग्लास का दूध लेकर के आई,
जी,
और तुरंत ही जल्दी जल्दी पी गया क्योंकि सचमुच भूखा भी था
जी।
और फिर वो जाने लगा तो अपने खिस्से से कुछ पैसे देने लगा
जी।
तो लड़की ने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि भी अच्छे काम के लिए हमें कुछ लेना नहीं होता है, तो उसने अपना नाम भी पूछ लिया लड़की का और फिर वह तो चला गया। कुछ साल बीत गए तो उसके बाद एक और छोटी बच्ची का ऑपरेशन होना था, तब तक तो लड़की बड़ी भी हो गई थी और उसका बहुत बड़ा बिल बना कि जब उसके हाथ में ये जो लड़की थी वो माँ बन गई थी वास्तव में, उसके हाथ में वो बिल आया तो उसे काफी लगा कि तो मैं कैसे कभी भी शायद मेरे जीवन में इतना तो मैं काफी भी कि उधार लूंगी तो भी नहीं दे पाऊंगी, तो फिर भी क्या करूं। तो बस थोड़े ही समय के बाद उसके हाथ में फिर से बिल आया और उसमें लिखा था नीचे कि द एवरीथिंग इज नो पेड फॉर अ ग्लास ऑफ मिल्क। वही डॉक्टर था वास्तव में। तो जब उसको नाम उसने देखा तो याद आया कि वीएसआई तो वही लड़की है, उसकी बेटी का मैंने ऑपरेशन किया। सो लाइफ इज अ बूमरैंग,
गुडनेस कम्स नेचुरली बैक टू यू, लोगों के लिए अच्छा करना है।
ऐसी बहुत सारे उदाहरण होते हैं परंतु हमें प्रैक्टिकल में करना चाहिए, थोड़ा सा भी आप किसी को मदद रूप हो सको तो अल्टीमेटली एक तो हमें अच्छा भी लगता है।
हाँ, एक बात डॉक्टर साहब देखी गई है कि अगर आप किसी के लिए भी अच्छा करते हैं तो इससे पहले कि वो अच्छाई या वो खुशी जो है दूसरे व्यक्ति को पहुंचे वो आपको खुद सेटिस्फाई कर जाती है, अंदर से तृप्त काफी कर जाती है,
आपके इमोशंस पीसफुल बन,
इमोशंस पीसफुल बन जाते हैं। और दिस इज आई थिंक गॉड्स वे ऑफ रिवॉर्डिंग यू,
रिवॉर्डिंग यू
इमीडिएट रिवॉर्ड जो आपको वो देता है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, कोऑपरेशन के साथ साथ कुछ भावनाएं और भी जुड़ी हुई हैं जिसमें सिंपथी होती है या एम्पथी होती है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि किसी से कोऑपरेट करने के लिए अंदर वो भावना भी होनी चाहिए।
आपने सही कहा, एक पास में से तीन प्रकार के लोग हैं
जी।
एक तो लोग है जो अपैथिक है,
एपैथिक,
जिनको कोई संबंध नहीं है कि इसको कुछ भी हो जाए, दुखी हो, कोई संबंध नहीं,
अनटच्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग।
दूसरे है जो लोग सिंपैथेटिक
है,
विच इज ऑल्सो एज वे इन अ वे नॉट गुड। कई बार लोग टीवी देखते हैं तो रोने लगते हैं, तो वास्तव में उनको पता तो है कि तो एक्टिंग कर रहे हैं, वास्तविकता नहीं है, लेकिन फिर भी आंसू आ जाते हैं।
मतलब देखा जाए तो कुछ एक्सटेंट तक प्रैक्टिकल लाइफ में बेनिफिट है, लेकिन एक परफेक्शन आप उसे कहेंगे।
व्हाट वी नीड इज एम्पथी,
एम्पथी,
एम्पथी इज द बेस्ट इमोशन,
बेस्ट इमोशन।
एम्पथी का अर्थ है कि अगर आप अपना पैर मेरे शूज में डालेंगे तो पता चलेगा कि ये कहां पर दर्द कर रहा है, बाहर खड़े खड़े नहीं पता।
सही है,
इसका भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक छोटा सा बच्चा था, उसको पप्पी खरीदना था। तो एक बार वो पप्पी खरीद दुकानदार के पास गया
जी।
तो दुकानदार ने कहा कि यह पप्पी ये 150 रुपये का है, ये दूसरा है 180 रुपये का है।
बिल्कुल।
फिर एक छोटा सा पप्पी पीछे में ऐसे ही था, तो उसने कहा इसकी कीमत क्या है? कहा बेटे इसकी कीमत तो 70 रुपीज ही है, लेकिन ये तुम नहीं खरीदो,
नहीं खरीदो,
क्योंकि ये लिंपिंग कर रहा है, इसका एक पैर ठीक नहीं है, तो तुम्हारे साथ दौड़ नहीं सकेगा,
नहीं सकेगा,
तुम उसके साथ खेल नहीं सकोगे, तुम इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो भी कहा नहीं नहीं मुझे तो वही पप्पी खरीदना है। फिर भी दुकानदार ने कहा अगर तुम समझो तो भले पैसे मुझे बाद में देना, अभी नहीं दो। फिर उसने कहा नहीं मुझे तो यही पप्पी, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास काफी पैसे है। उसने पैसा पप्पी खरीद लिया। फिर दुकानदार ने पूछा बेटे जरा बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बच्चे ने कुछ नहीं कहा, अपना ट्राउजर ऊपर उठाया तो देखा कि भी वो उसके पास भी आर्टिफिशियल फुट था। उसने कहा कि मैंने इसलिए खरीदा कि एक तो मैं भी इतना अच्छा दौड़ नहीं सकता हूं, और दूसरा कि मैं इस पप्पी का प्रॉब्लम ठीक से समझ
सका,
और कोई भी व्यक्ति इसका प्रॉब्लम नहीं समझ पाएगा क्योंकि मैं भी इसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा हूं। दिस इज एम्पथी।
उदाहरण के थ्रू आपने ये कहा कि सिंपथी को हम कहें तो आई कैन अंडरस्टैंड द वे यू फील, एंड एम्पथी को कहा जाए तो आई कैन फील द वे यू फील। मतलब जो अंदर उसको भावना को उसके ऊपर क्या बीत रहा है उसे समझ पाए। तो अगर मनुष्य रियली में दूसरे के साथ एम्पथेसाइज कर पाए, उसकी भावनाओं को समझ पाए, उसके दर्द को समझ पाए, तो मेरे ख्याल से कोऑपरेशन नेचुरली, इसके बारे में सोचने की बात नहीं, ये एक नेचर ऑटोमेटिकली हमारा बन जाता है।
बिल्कुल।
और डॉक्टर साहब ये आप बताइए कि कुछ प्रैक्टिकल वेज इसको आप हमारे दर्शकों को कैसे बताना चाहेंगे, इससे पहले कि हम आपसे अगला स्टेप जाने, ये 4 C's जो आपने बताया इनका प्रैक्टिस का आप उन्हें क्या गाइडेंस देंगे? हजारों लाखों दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आपने इतने अच्छे 4 C's बताए, तो आप उन्हें क्या टिप देना चाहेंगे, उनको किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए?
एक तो मैं ये कहूंगा कि भी इनको अंडरस्टैंड कर लो ठीक से, नहीं रिमेम्बर देम ऑल्सो, अभी तो सुना लेकिन आपने याद नहीं रखा तो काम में नहीं आएगा
जी।
और जब भी प्रॉब्लम है तब तुरंत सोचो कि भी 4 C's में से कौन सा मैं अप्लाई कर सकता हूं, कोई ना कोई तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, जैसे आप चैलेंज के रूप में ले सकते हैं। कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो चैलेंज के रूप में नहीं ले सकता हूं, पहाड़ जैसी समस्या है, मैं इसके सामने लड़ ही नहीं पाऊंगा। ठीक है चलो आपके कंट्रोल में है वही कर लो, कोई ये भी कहे मेरे कंट्रोल में भी कुछ भी नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, तो कम से कम कम्युनिकेट तो करो। नहीं मैं अंदर ही अंदर दुखी हूं, उसके बदले में किसी न किसी के साथ कम्युनिकेट करूं।
जी हाँ,
और कोऑपरेशन तो हमेशा करना है, ये नहीं कि जब समस्या आए तभी आप सोचो, अभी कोऑपरेशन नहीं करना है। वास्तव में जब जब भी आपको मौका मिले, कोई व्यक्ति थोड़ा भी समस्या में है, उसे छोटी सी हेल्प करने की कोशिश करो, तो ऑटोमेटिकली वो बेनिफिट्स आपके पास आने लगे,
ऑटोमेटिकली दे विल फ्लो बैक टू यू। डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो हमारे लोग हैं, इतने दर्शक देख रहे हैं, अगर डेली उठकर मॉर्निंग के अंदर ये प्रण ले कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई सिचुएशन आए, तो उसको मुझे आज चैलेंज की तरह लेना है। इसको एक आप कहें तो एक स्लोगन की तरह फ्रेम करा के लगा लिया जाए कि चैलेंज करना है उसको, फिर कंट्रोल करना है, कम्युनिकेट करना है और कोऑपरेट करना है, तो मेरे को लगता है लाइफ काफी हद तक अपने तनाव को वो दूर कर पाएंगे। अच्छा एक और बात बताइए, क्या जब हम इन फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं, ये जो चारों आपने बताए ये मेथड्स, इनके बारे में सोचते हैं, तो तनाव कैसे दूर होता है इससे?
तनाव एक तो जैसे चैलेंज का हमने कहा
जी
कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है,
एफिशिएंसी
हमने शुरू में पहले इसके एक डेफिनेशन भी देखी
जी हाँ,
कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द सिचुएशन डिवाइडेड बाय कोपिंग एबिलिटी।
जी बिल्कुल, ये तो काफी प्रेशर ऑफ द सिचुएशन डिवाइडेड बाय
कोपिंग एबिलिटी,
अगर कोपिंग बढ़ जाती है तो रिलेशन उसका काफी कम हो जाता है,
स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी
जी, और अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो कोपिंग
कम। और दूसरा जब आपके जो कंट्रोल में वो आप करेंगे तो भी आपको सोचने का समय
नहीं मिलेगा, बिल्कुल,
क्योंकि तनाव है वो सोच से बढ़ता है।
और फिर शेयरिंग हो गई, आपने बताया कम्युनिकेट हमने
उससे भी बेनिफिट हुआ, कोऑपरेशन किया तो भी आपको और एक
तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी के लिए अच्छा किया, सब आपके साथ ही, आपने अच्छा इतना अच्छा एग्जांपल भी दिया, कभी ना कभी वापस आता ही है
बैलेंस। आपको जो इंटरनल जो अच्छी फीलिंग होती है उससे भी तनाव कम हो जाता है।
डॉक्टर साहब आपने आज तनाव के निवारण के लिए हमें चार सीज बताए, और चार सीज बहुत ही एक जबरदस्त दवाई है, एक गोली है मीठी, जो अगर हमारे दर्शक लें या हमारे कुछ मरीज लें, कुछ भी लें, तो अपने जीवन से कुछ हद तक तो या काफी हद तक तो तनाव का निवारण कर सकते हैं। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके साथ फिर अपनी चर्चा जारी रखेंगे अपने अगले एपिसोड में। तो आपने देखा कि तनाव का निवारण पॉसिबल है, उसको हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है हमारे संकल्प की, हमारे पावरफुल थॉट की। आज आपको चार सीज के रूप में चार पावरफुल थॉट्स दिए डॉक्टर साहब ने, जिसको कहते हैं कि चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, दूसरा है सिचुएशन पर हमें कंट्रोल रखना है, तीसरी है कि कम्युनिकेट करना है किसी से भी, और कोई भी अगर नहीं मिलता है तो भगवान से बात करनी है, और चौथा है कोऑपरेशन देनी है, सर्व का सहयोग देना है और सर्व से सहयोग लेना है। और मैं समझता हूं कि जब हम इन बातों के बारे में, इन चारों चीजों के बारे में सोचते भी हैं, तो ऑटोमेटिकली तनाव कुछ हद तक तो दूर हो ही जाता है। तो हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।